दाहिनी शक्ति ऐसे राज्य में जब स्वामी जी दिल्ली पहुंचे, अब रामदास और मुंडू को कहा, बोलो भी आप क्या करें, तो बड़ी मुसीबत है। औरंगजेब से मिलना और उसको कुरान की लिखनी बातें, और हम है हिंदू, और जब ये कहे कुरान हमारा तो गर्दन, बोलो कानून है वहां के हिंदू अगर कहते कुरान और मुख से निकल जाए कुरान का शब्द तो गर्दन कर जाए। सुंदर शास्त्री लाल दरवाजे में स्वामी जी चले गए, आज भी है लाल दरवाजा, उसका नाम आज भी लाल दरवाजा है। जुम्मा मस्जिद के बिल्कुल पीछे जो मजार चावड़ी मजार जाता है, उसका जो दरवाजा है उसका नाम लाल दरवाजा है आज भी। वह विठल गौर की हवेली ले ली और वहां बैठ करके अब कुरान की चर्चा, अभी कुरान लिया नहीं हाथ में, ला इलाहा के मैंने की खोल करके स्वामी जी अपने मोमनों को समझाने लगे, क्योंकि ज्ञान सुनी मोमनों के हृदय में अल्लाह के बारे में भाव बैठे नहीं, क्या सुनी मुसलमानों को चर्चा, बोलो भाई सुना सकते हैं, मुसलमानों को चर्चा सुनानी होगी तो कौन से ग्रंथ से सुनाएंगे, कुरान से। और हिंदू को गीता वाले को चर्चा सुनानी है गीता से, भागवत वाले को भागवत से, और वेदों वालों को वेदों से। वो तो सारे साल स्वामी जी के पास रहे, अब स्वामी जी कुरान के सार निकाल निकाल करके और इसको सुनाने लगे अपने सुंदर छात्र को। ध्यान ध्यान जरा समझना अच्छी तरह से, वहां पर बाजू में एक शेख सुलेमान जो कि औरंगजेब के राज का दरबारी था, रहता था। अब उसने जब देखा कि इतनी बड़ी भारी जमात इनकी है और ये काम काज कुछ करते नहीं, मालूम होता है एक पीर साहब, क्योंकि वो चर्चा कुरान की हो रही थी ना, तो शेख जी ने क्या समझा कि ये भी कोई मोटा वडेर पीर है, उसके पास दर रोज स्वामी जी के पास वो कुरान की चर्चा सुनने आने लगा। और जब देखा कि भाई कभी तो मालपुए खा रहे हैं, कभी लड्डू पाक इनकी मिठाइयां चलती है, तो इनके पास कोई साइन है। अब उसको खुदा की बात तो भूल गया, वो श्री जी के पास किस बात के लिए आने लग गया कि मुझे भी सोना बनाने का ढंग सिखा दे, क्यों दुनिया भरों को तो अपना स्वार्थ चाहिए। तब स्वामी जी ने कहा, अच्छा भाई ऐसे सुलेमान ऐसा कर, हम तुमको सोना बनाने का ढंग सिखाएंगे, लेकिन तुम हमारा काम कर पहले, कि हम एक चिट्ठी तुमको पत्नी देते, इसको जाकर के औरंगजेब के हाथ में दे। अब उसमें स्वामी जी ने लिखा क्या, 22 प्रश्न कुरान के लिखे, जिसमें 7 निशान कुरान के बड़े मोटे मोटे, जो मोहम्मद साहब ने कहे थे कि जब अल्लाह ताला आएगा, क्योंकि उनके जो 4 याद थे ना, अनु अबू बकर अली अबू बकर उस्मान और ज़ैद, तो जब ये चारों यार क़यामत के बारे पूछने आते थे, बड़ा शंसिल आते थे, फिर उन्होंने कहा भाई अल्लाह ताला आएगा, कह लगे अच्छा रसूल साहब कुछ निशान तो बताओ। बड़ी 40 हदीसों के अंदर भी बहुत निशान दिए कि जब अल्लाह ताला आएगा, दरो दीवार से संगीत की आवाजें आया करें। दर कहते हैं दीवार को और दीवार कहते हैं भीत को, इसमें से संगीत की आवाज आएगी, जिस गली में से आप निकलोगे, हर दीवार हर द्वार में से क्या निकलेगा, ट्रांसमिशन की आवाज, रेडियो की आवाज, दीवारों में से ये सुनाई देगा। आ गया वो निशान, कह रहे हजूर कोई और निशान बताइए, तो 7 निशान मोटे क्या बताया, कि सूर्य पूरब की बजाय पश्चिम से उदय होगा, पर तुम्हारे लिए वो अंधार रहेगा, तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा। और क्या प्रमाण लिखा, कि एक मुर्दे जो है कब्रों से उठ करके खड़े हुए। और क्या कहा, के आजूज माजूज जाहिर हो। और क्या कहा, कि एक जब इमाम मेहदी दुनिया में आएंगे, तो दुनिया की धरती पर दावतुल अर्ज جانور پیدا ہو جائے گا اور جہاں دیکھو گے وہ جانور ہی جانور دکھائی دے گا. کہہ لگے جی اس کی کیا نشانی ہوگی؟ دھیان سے سننا بھائی. کمر شکل تو اس کی انسان کی ہوگی مانو جیسی، لیکن چھاتی اس کی دیکھو گے تو شیر کی ہوگی، آنکھیں دیکھو گے تو سور کی ہوگی، کان دیکھو گے ہاتھی کے ہوگی، سیر کو دیکھو گے تو پہاڑی بیل کا سینگ لگا ہوئے گا، ایک گردن کو دیکھو گے تو مرغے کی ہوئے گی، پیٹ کو دیکھو گے تو گیدڑ کی ہوئے گی، ایسا ہو جاؤ. کہنے لگے یہ بھی ٹھیک ہے، اب تو اور خان کر دیں گے، جب ایسے ایسے جانور جانور دکھائی دیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ایمان میں جی دنیا میں. اور کہنے لگے اور کچھ نشان؟ کہنے لگے ہاں دجال آئے گا اور وہ ایک آنکھ سے کھڑا ہوگا، ایک آنکھ سے اس کو دکھے گا، ایک سے دکھے گا، اور اس کا جو گھوڑا ہوگا جس پر وہ بیٹھا ہوا ہوئے گا وہ کھڑا تو ہوگا پرتھوی پر اور اس کی پیٹھ لگے گی آسمان میں، اس کے اوپر بیٹھ کے آئے گا. اب آپ بولو جس کا پگ ہوئے دھرتی پر اور پیٹھ ہوئے آسمان میں اس پر بیٹھے گا تو، ارے آسمان میں جب اس کی پیٹھ لگے گی تو بیٹھنے والا بیٹھے گا کہاں؟ نہیں سمجھ آئی ابھی بھی؟ او بابا، مانو ایک گھوڑا ہوئے تو کھڑا ادھر ہوئے اور اس کی چھت کے ساتھ پیٹھ لگے اس پر بیٹھے ہوئے کہاں سے بیٹھے ہو؟ ایک پرمان دے رکھے کہ گدھا جو دجال جو ہوگا ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور جس وہ گدھے پر بیٹھ کر کے آئے گا اس کی پیٹھ آکاش کو چھو رہی ہوگی، ایسا کہنے لگے. یہ بھی موٹا نشان ہے، اب پیٹرن کر لیں گے. اور تین نشان اور بتائے، امام مہدی جب آئے گا اس کے ساتھ عیسیٰ روح اللہ بھی آئیں گے، اور محمد صاحب نے کہا میں بھی ان کے ساتھ آؤں گا، یہ میرا نشان ہوگا، پر میں آؤں گا جب پردے میں آؤں گا بولوں گا، میں جو بھاشا اب بول رہا ہوں یہ بھاشا بولوں گا. جو کام اول کرتا ہوں سو آئے کروں گا آخر، پہلے قبر سے میں اٹھوں گا اپنے بھائیوں کی خاطر. تب وہ سارے یار بولنے لگے جی حضور ہم آپ کے بھائی نہیں، نا بھائی ہمارے اور ہے تم ہو میرے یار، تم میرے یار ہو، بھائی میرے، میری امت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی ہوگی، میں ان میں پہلے اٹھوں گا، میری آواز سے پہچان جانا کہ محمد صاحب ہے، میں ان کے اندر بیٹھ کر کے بولا کروں. اب یہ سارے نشان قرآن میں لکھے، اب اس کو لکھ کر کے سامی جی نے شیخ سلیمان کو وہ پتری دی کہ یہ پتری جو ہے تو اورنگزیب کے دربار میں پہنچا دے، ہم تجھے سونا بنانے کا ڈنگ سیکھا. یہ لگے نا بابا مجھے سونا بنانا نہیں سیکھنا، ارے یہ پتری میں بھی چاہتی ہوں. اور جب اورنگزیب نے میرے سے پوچھا اس کا معنی کیا ہے تو مجھ کو معنی آتا نہیں، اور اس سمے میری گردن بھی ہٹنے کا نہ بابا نہ نہ ہم کو سونا نہیں چاہیے، لو آئی تھی. آپ سامنے بڑے حیران ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، کرے تو کیا کرے، بڑا پریتن کیے سندر صاحب جی، پر کٹھن کام کتنا ہے، کتنا کٹھن کام ہے کہ جس بادشاہ کے دربار میں محمد کا نام لینا ہوئے گردن کاٹتے ہوئے، اور سوامی جی نے کیا دعویٰ لینا ہے کہ محمد اللہ میں سوئم ہوں، یہ موت کا کھیل نہیں تو اور کیا ہے بتاؤ. اب شاستروں میں کیا لکھا ہے دھیان تو سندر صاحب جی، جو شاستروں کو جانتے ہیں، کہ جب ودیا بنند بدھ نشکرن کرتا دنیا میں آئے گا تو ان کے ساتھ ایسے آدمی ہوئیں گے جن کی دھڑ دھڑ تو ہوئے گی پر سیل دھڑ پہ ہو گئی. نہیں سمجھائی کہ آنگوڑ جو ہے نا اپنا، جب ودیا بنند بدھ نشکرن کرتا آئے گا تو ان کے جو سنگی ساتھی ہوئے گے ان کے دھڑ دھڑ تو ہوئے گا پر مول سر پر ہوئے گا ہی نہیں. ایک کون ہوں گے؟ مومن، जो मरने की कभी चिंता करेंगे ही नहीं। जैसे अपने भी किसी को कहते हैं, ओ तेरा सिर लगा है साहब के सामने मरेगा, है वो मरना चाहता है तो तेरी कंजुका बिना के। मतलब शास्त्रों ने ये प्रमाण दिया है कि परम धाम की आत्मा जो ब्रह्म मुनि होंगे वो मनुष्य तो बने धारण करेंगे, पर उनको मरने का कभी भी डर होगा नहीं। वो अपने सिर को समझेंगे नहीं किसका सिर है, वो समझ जाएंगे सिर हमारा नहीं है, ये तो अब तन मन जीव निछावर जब राजी के चरणों में कर दिया है दे या ना ले में, अपने तो राजी का हुक्म मानना ऐसे तैयार है। अब स्वामी जी लालदास जिसे कहते हैं भाई क्या करें, अब चिट्ठी पत्री जब तक औरंगजेब के पास हमारा संदेश नहीं जावे और कोई वार्ता उनके सामने बैठ के करेगी तब तक काम कैसे चलेगा। तब स्वामी जी युवा युवा सुंदर साथ को, युवा से मतलब युवा देश नहीं पक्का पर भी अंदर मिटने वाले थे ऐसे मुगनों को लेकर अब चले रहे शाहजहानपुर बुढ़िया। इतने में क्या हुआ के सूरत से लक्ष्मी दास जी लक्ष्मी भाई अपने परिवार को लेकर के दिल्ली आ गए। अब सुंदर शादी देखे राजी महाराज जी क्या मजा लूटते। मोमनों की परीक्षा कब होती है, जब कोई ईमान से गिरने लगता है ना तो राजी भी परीक्षा उस वक्त लेते। अब लोगों का ईमान बड़ा जरा दिल्ली में जब कुरान की चर्चा और ऐसी बातें सुनी तो जो बहकने वाले लोग हैं वो अपना ईमान छोड़ दिया करते हैं। ऐसे में राजी परीक्षा लेते जैसे ही लक्ष्मी दास आकर के दिल्ली में रहा तो राजीव राय ने उनके घर दर्शन दिए। साक्षात कृष्ण कन्हैया जी ने आकर के बांसुरी बजाते हुए दर्शन दिए। कहने लगे लक्ष्मी दास ये जो औरंगजेब है ये है परम धाम की शाह कुमार भाई की वासना और इसकी जागरी हम तुम्हारे हाथ से करेंगे। कहने लगे बहुत करूं, कह लगे ऐसे कर पर करेंगे सातवें दिन। सातवें दिन से पहले उसकी जान दे दी बोली, सातवें दिन हम पकड़ के लाएंगे। अब कोई परम धाम की आत्म ब्रह्म सृष्टि ने भी तक समझी हो तब तो उसको पता चल जाएगा कि शाह कुमार ने कब जगना है, सातवें दिन जगना है। अब सातवां दिन कौन अर्थ निकाले इस वाणी का, जिनके पास राजीव राज की मेहर से जादू बुद्ध हो। और लीला कौन से दिन की हो रही थी, पांचवें दिन की। समझाइए रोज सुनोगे चाचा को पर सातवां दिन लेते जाओ फिर मुश्किलियां खाओगे, पहला दिन ब्रिज का और दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन अरब का, चौथा दिन सतगुरु श्री धनी देवचंद जी का और पांचवा दिन स्वामी श्री प्राणनाथ जी का। वो पांचवा दिन चल रहा था और उसकी जागरी किस दिन होनी है, सातवें दिन। लिखा है मिटा शर्मा पढ़ लो आपने कि आज से सातवें दिन मैं शाह कुमार को लेके आऊंगा और तेरे हथों लगाऊंगा। कहने लगे जी बहुत ठीक, आप श्री कृष्ण कन्हैया जी आए राजी महाराज कर राजी श्री कृष्ण जी का रूप धारण करके तीन वक्त बांसुरी भी बजाए सारी लीला में आके आलोके भी। और सुंदर सास ने क्या किया, एक खबर जब स्वामी जी को लगी तो लक्ष्मी दास गया और जाकर के स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी राजी महाराज मेरे घर साक्षात आते और उन्होंने कहा शाह कुमार की जागरी में तेरे हास्य करूंगा। सुंदर सास जी आप देखिए स्वामी जी यहाँ तो कोई जागरी का नाम सुनता है ना तो घर घर मना करने जाता है, क्या भाई वहां नहीं जाना, चर्चा नहीं सुननी वहां पर। अब देखो स्वामी जी की ये वाणी सुनो जरा क्या कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं भाई लक्ष्मीदास अपने को तो मतलब जागरी से है, राजीव राज जिससे भी करावे हमें तो कुछ ही है, क्योंकि मतलब तो काम होने से है। अगर कोई सुनना था स्वामी जी क्या कहते हैं कि लक्ष्मीदास अगर राजी ने तेरे हाथों जागने का काम लिखा है कहा है तो तुम आगे चलो मैं तुम्हारे पीछे चलो। ये स्वामी जी ने वाणी में लिखा है पढ़ो कि तुम जागने का काम करो मैं तुम्हारे पीछे चलता हूं, यदि तुम आगे नहीं कर सकते तो मेरे साथ मिल करके कंधा लगाओ और मिल करके जागने का काम करे। और कोई सुंदर साथ अगर यदि आगे भी नहीं चल सकता और कंधा भी नहीं लगा सकता तो फिर मुझे एक इंसान ना समझो, मुझे अक्षराती का रूप समझ करके मेरे पीछे चलते हो। बात पर बंधन नहीं तो तुम आदर करो, मैं तुम्हारे पीछे चलता। तब लक्ष्मीदास कहने लगा कि स्वामी जी आगे तो हम नहीं चल सकते पर तुम्हारे संग जरूर हम बैठेंगे, एक आसन मेरे लिए भी बचाओ। अच्छा अभी लोग भी तब लालदास जी को कहा और एक आसन बराबर श्री जी के समान रख गया। लोग अब जो सुंदर साथ ब्रह्म वेद ही पढ़ सकते हैं और स्वामी जी के स्वरूप को जान चुके हैं अच्छी तरह से, अब वो पहले तो आके शिव जी के पगे लगते हैं, फिर लक्ष्मीदास को पता क्या प्रणाम करते हैं। लक्ष्मीदास महाराज धाम के दरी जी प्रणाम। एक दो दिन तो प्रणाम कहलवाता रहा, तीसरे दिन कहते स्वामी जी है जो प्रणाम करते ना मुझे, ये तो बड़ी घटाश होती है, मैं तो नीचे बैठता हूँ, मैं शाम मार को तो जाऊंगा पर नीचे बैठूंगा। लेकिन भाई कैसे बने तेरी इच्छा हो। अब छह दिन तो राजीव राज रोज उसको वायदा करते रहे, अब कह दिया भाई अब कल सातवां दिन है, कल मैं शाम कुमार को लेकर के आऊंगा। अब सातवें दिन आए तो शाम कुमार को तो लाए नहीं, अब तो बड़ी तैयारी करके बैठा था लक्ष्मीदास चंदन पुष्प लेकर के बैठा था, भाई शाम कुमार को दिल लगाऊंगा ना, तो फिर वो मना डालेगा तुम देंगे मेरा नाम उठेगा। अब राजी आए खाली हाथ और सुंदर साथ का तो मना सब बैठे जाए इकट्ठे, वही आज शाम कुमार की वर्षा आएगी उसको तारतम मिलना है, वो खुशियां मनाएंगे प्रोग्राम वहां पर चले जाएंगे, ध्यान देना सुंदर साथ जी। राजी आए और आके कहते हो लक्ष्मीदास तू अंधा होके बैठा है, जागनी का काम तो धाम के धनी के हाथ में और हम बैठे हैं महाराज ठाकुर के दर में, बस दिन दाली और चलो। अब जितने सुंदर साथ बैठे थे खूब हंसे उड़ाने लगे और कहने लगे लक्ष्मीदास जी महाराज धामदेवी जी महाराज प्रणाम। स्वामी जी को सूचना मिली, क्या लगे भाई कोई बात राजीव महाराज कुछ भी करे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तब सुंदर साथ को लेके जिनका राजीव पर विश्वास या पक्का यकीन था, क्योंकि सुंदर साथ जी मेरे से पहले स्वामी जी कभी पुराण की चर्चा नहीं सुनाते थे, जो सतपुरुष श्री देवचंद जी ने तात्व ज्ञान श्री राजीव राज की जागृत बुद्ध और वही हिंदुओं के ग्रंथों गीता भागवत वेद शास्त्र पुराण से बात करते थे। लेकिन यहां क्या हुआ, मोहम्मद मिले इसे मिले तब अहमद हुआ श्याम, और इस मेहंदी मिले इस अहमद मिले, ये तीनों मिल भय अहमद के अंदर कौन मिल गया मेहंदी मिल गए तब इमाम का रूप, यानी यहां तक यहां मोहम्मद को मिल चले, बस मोहम्मद की शक्ति जो कुरान की थी हुक्म की वो अंदर आ करके आतम अक्षर भी बैठ गई और पांच शक्तियां हकी सूरत बन गई। श्री धनी जी का जोश आतम दुल्हन जागृत बुद्ध ए दूर तो पहले ही था, लेकिन मोहम्मद की शक्ति जो पांचवी थी हुक्म के स्वरूप की वो मेरे में श्री जी में आकर के बैठी। अब मैं हुई महामती पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलन करता इमाम वेदी के स्वरूप बन के दिल्ली में आते हैं और जाहिर होने के वास्ते मुग्न को ले जाते हैं एकांत कहा शाहजहानपुर बुढ़िया। आप जैसे ही वहां गए उन 22 प्रश्नों का हिंदी से उर्दू में टीका करने के लिए के लालदास ज्ञान सुधिया हिंदी नोटी का उर्दू में छसे नहीं, ज्ञान सुधिया औरंगजेब के दरबार में अंदर आप पैगाम अपना जा ही नहीं सकता है, वहां बैठ करके अब काम शुरू किया और माया भी आने जाती है। क्या हो गया कि माया ने सोचा है तो काम बड़ा कठिन हो जाएगा, अगर औरंगजेब के दरबार में ये पैगाम चला गया और औरंगजेब भी प्रणनाथ जी के साथ मिल गए तो मेरे लिए तो बड़ा मुसीबत हो जाएगा। अब माया और तो कुछ कर नहीं सकी, और विगत कुछ आया नहीं, एक दम जहां शाहजहानपुर बुढ़िया में स्वामी जी गए, मिर्गी की बीमारी। अब मिर्गी की बीमारी जो चालू हुई, तो सबसे पहले अपना साथी गरीब दास, जिसका नाम नहीं था भाई, इतना भी भूल जाते हैं, उसको ही बीमारी ने पकड़ लिया। अब स्वामी जी ने सोचा भी एक तो संकट का समय है, और एक यदि अपना साथी के धाम चल गया तो सुंदर सास का ईमान तो बिल्कुल गिर जाएगा। इसलिए जब मिर्की ने आकर के घेरा और मौत बिल्कुल आ गई कि अब गरीब दास मर जाएगा, तो स्वामी जी ने कहा गरीब दास इधर देख, केवल मेरी आंखों में देखता है। तो स्वामी जी ने अपनी आवेश की शक्ति उसकी आंखों में डाल दी। सुंदर साथ जी मलकुल मौत झलूबिया, काल का रूप जो मौत को होती है, आकर के फड़कती रही, लेकिन अपने साथी का बाल नहीं कहा, वो गरीब दास बने। स्वामी जी की शक्ति जब उनके अंदर प्रवेश करती, मौत निकट नहीं आई। तब अब वहां बैठ करके उसका टीका किया, हिंदी में से उर्दू भाषा बनाई, फिर वहां से दादरी के राजा को जगाने के लिए निर्मल दास जी और सुंदर साहब को भेजा, उनकी भी खबर निकाली। पर देश और प्रजा और राज्य के वास्ते तो वो था, पर धर्म के प्रति कुछ भी आस्था और उसके हृदय में नहीं थी। आप ध्यान देना, जब ये टीका हो गया तैयार, तब एकदम लाल दास जी और भीम भाई, जिनके ऊपर श्री जी को पूर्ण विश्वास था कि ये मोमिन मर सकते हैं, पर इनका बादल कभी भी पीछे आएगा नहीं, इनको हुक्म दिया के जाओ एक पैगाम 22 प्रश्न जो उर्दू भाषा में अब किए हैं, एक औरंगजेब के दरबार में जाके पहुंचाओ। लालदास जी और भीम भाई लेकर के पैगाम को दिल्ली आए, औरंगजेब को पैगाम देना है। पीछे से श्री राजीव राय ने क्या इनाम दिया, अंदर से प्रेरणा क्या दी कि नहीं, 1735 का वर्ष आ गया है, चैत का महीना फागुन का लग गया है, पहले औरंगजेब से नहीं मिलना, पहले हरि द्वार चलना है। क्योंकि शास्त्रों में हुक्म में से क्या लिखवा रखा है कि जब साका सालवान का 1600 पूर्ण होगा, तब 1735 कुंभ का मेला होगा, और वहां विद्यानंद मजनक अवतार को जाहिर होना है। इस वास्ते जो है ये जो चिट्ठी पैगाम तुमने भेजा है, इसको रोक लो, अभी इसका समय नहीं, इससे औरंगजेब से चूक पड़ेगी, हो सकता है मोमिनों को वो मार डाले। इस वास्ते तुरंत वहां से कांजी भाई को भेजा कि जाओ दिल्ली में लालदास जी और भीम भाई को रोक दो और हमको वहां आने दो, फिर अपन जो राजीव राय का हुक्म होगा वो कार्य करेंगे। दौड़ करके कांजी भाई शाहजहानपुर बुढ़िया से दिल्ली आया और लालदास जी और भीम भाई को कह दिया कि जो श्री राजीव राय ने स्वामी शिवकामना जी ने आपको एक पैगाम पत्री देने के लिए दिया था, वह रद्द कर दिया है, और उन्होंने कहा उसको दिल्ली आने दो। एक महीना दिल्ली आकर के स्वामी जी सुंदर साथ के बीच रहे, योजना बनाते रहे, पर अब उधर से विशाख का महीना आ गया, तो दिल्ली में माताएं बहने और सब सुंदर साथ को छोड़कर स्वामी जी उन सुंदर साथ को जो वेदों से शास्त्रों से महाराज लालदास जी केशवदास इत्यादि और जो सुंदर साथ भीम भाई श्याम भट्ट इत्यादि थे, उनको लेकर के कहा गए हरिद्वार पहुंचे। साका सालवान का 1600 उस समय सालवान का संचल रहा था,
बैठा
साका विजय अभिनंदन का, तो साका विजय अभिनंदन करता का उस समय से चालू हुआ। कैसे सालवान की जो है संबंध को हटा करके स्वामी जी ने जाकर के जितने भी धर्मों के आचार्य थे उनके साथ सत्संग कर, अब उनका समन्वय नहीं किया। सुंदर साहब जी बड़े ध्यान के साथ आज का प्रसंग सुनना, कोई लिखने वाले बड़े बड़े महान जो आज धर्म के अगुए और ठेकेदार बने बैठे क्या लिख दिया करते हैं पत्रिका में, सब आचार्यों ने स्वामी जी को उपाधि दी, उपाधि। इतने भी शब्द का अर्थ नहीं समझते और ठेकेदार समाजों के मन के वो बैठ जाते हैं। अब यदि कोई सच्ची बात कह दी जाए, अरे भाई महत्ता कम हो गई, कई लोग कहते करके प्रसंग में, हजरा चो भाई अब स्वामी जी ने लिखी है हजरते हरि इतकरी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की, पूछ किया दारुल मक्का। लड़ाई तो चल रही है बिहारी जी से, वहां नौतनपुरी धाम की क्या महत्ता कम हुई नहीं? दृष्टि संकुचित कुएं की है ना, उनको अर्थ यही सूझ रही, अगर दम करना था तो स्वामी जी ने वाणी में क्यों लिखा धन धन पुरी, तो फिर धनपुरी नौतन को लिखा, अगर नौतनपुरी को कम करना, नौतनपुरी को नहीं कम करना, कम करना था बिहारी जी की जो व्यवहार और बुद्धि चल रही थी, इसलिए चार मंदिर के बाद फिर वहां कोई हमारे आचार्य जी क्यों नहीं बैठे, इस चीज को सोचिए। ये जो वही कहती थी बिहारी जी के अंदर जो दज्जाल बैठा हुआ था उसको जीत करके आप राजिवराज, आप श्री प्राणाधिवराज प्रणाली परमात्मा पूरी झांक के वास्ते वहां से चलते हैं। तो नौतनपुरी का अगर महत्व कम करना था तो वाणिज्य के बाद में उतनी धनपुरी नौतन ना लिखते, उसके अंदर क्यों लिखा? अरे उससे पूरी कहा कौन मान कम कर सकता है जहां हमारे धाम के लेके जाते उस स्थान को कौन छोटा कह सकता है। और ये जो कहते ना अरे महत्ता कम कर दी और नौतनपुरी तो स्वर्ग जैसा है, अब बताओ ठेकेदार वो बने फिरते नौतनपुरी के और नौतनपुरी की तुलना किसके साथ कर रहे, स्वर्ग के साथ, और कहते हम नौतनपुरी के इम्पोर्टेंट व्यक्ति झंडा था नहीं। अरे स्वर्ग का तो महापर्व में नाच होगा, सुंदर साधनी तातम वाणी लेकर के अपना घर पहुंचा है स्वर्ग के वैकुंठ, कोई स्वर्ग चलेगा? वो कहते हैं नौतनपुरी स्वर्ग है, जाओगे स्वर्ग में कोई नहीं जाता, बात क्या की जाए, कोई वैकुंठ जाएगा नहीं जाना, अच्छा वो योग माया में बाल मुकंदी के पास जाएगा नहीं जाएंगे, एकदम रुका जवाब, अच्छा कोई बात के बिहारी राधा जी के पास जाना चाहता है नहीं जाएंगे, कोई श्याम शर्मा अनादि अक्षरा जी के पास जाना चाहता है, पहचानी? सोचिए अब होता क्या है, उपाधि देने वाला बड़ा के लेने वाला, देने वाला, और वो लोग बने बैठे ठेकेदार अगुए और पत्रिकाओं में क्या लिखते हैं, सब धर्माचार्यों ने प्राणनाथ जी को उपाधि दिया था क्योंकि प्राणनाथ यतीम बालक था ना, प्राणनाथ जी ने सबके अहंकारों को तोड़ा और जो सत्य की पूजा करते थे उनका सिर धरती में गड़ा दिया, लोग उनके चरणों में गिरे ना के उपाधि दी और उनको अक्षरातीत पार ब्रह्म माना, स्वामी ने सत्य की बात जमाने से उनका सत्य उनका समझ में नहीं किया, उनको एकीकरण करके बताया कि तुम बद्धा आचार्य जो है सब गलत हो, तुम असत्य को परमात्मा मानते हो और तुम्हारे ग्रंथों के अंदर लिखा है परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है। अब आइए वो तो संग हुए कैसे, भूल करके भी कभी ऐसा ना कहना कि प्राणनाथ जी को किसी ने उपाधि दी थी, क्या सूर्य को सुबह कोई उपाधि देता है, जो अंधेरे होते ना पेट्रोल मार्क्स होते क्या उनको कोई घंटी बजाता है, ए अंधेरे फिर भाग जा भाग जा सूर्य करने वाला भाग जा भाग जा, वो कहते हैं कोई चंद्रमा को कहता है, सूर्य का तेज ही ऐसा होता है कि उसके सामने ना तो चंद्रमा ना स्ट्रीट लाइट और ना तारागण और ना पेट्रोमक्स और ना कोई लालगण कोई बत्ती नहीं जलती, बग्गे क्या कहते अरे पागल अरे आप तो सूर्य निकल रहा है इसे बुझा बुझा ये नहीं अच्छा लगता है, अब सूर्य का तेज आ गया, श्री प्राणनाथ जी की वाणी का तेज सूर्य करके कोई भी किताब में ठहर नहीं सकता। क्या सूर्य को कोई उपाधि देने जाता है तो सूर्य देव है। ध्यान के साथ सुनिए अब होता क्या है। जब स्वामी जी अपने सुंदर साथ को हरिद्वार लेकर के पहुंचे तो मैंने परसों भी बताया था स्वामी जी कभी भी भगवा वस्त्र धरते नहीं है। सफेद वस्त्र सफेद जाबा सफेद धोती सफेद ही सावा से पता लेकर के सुंदर साथ को हरिद्वार में पहुंच गए। अब वहां के जितने धर्माचार्य थे उनके हृदय में क्या प्रकट होने लगी जरा ध्यान के साथ सुनिया वाली से। विक्रमा जीत के राज से कौन सा संबंध चल रहा था। वर्ष 1735 का वर्ष था सुंदर साथ जी। जब आप धाम के द्वारा श्री प्राणनाथ जी महाराज वह विद्यावंत मधुष्करण का अवतार हरिद्वार में गए। 1735 का वर्ष था तब जीत हुई। जैसे क्रिकेट का मैच होता है अब वहां मैच होना है। एक तरफ मेरा प्राणनाथ है और दूसरे तरफ संसार के सारे आचार्यों की टीम है। प्राणनाथ है एक तरफ। अब देखो जरा होता क्या है। कौन खड़ा है। बुद्ध ईश्वरों के ईश पार ब्रह्म अक्षरा वेद जो है जिनकी वंदना अक्षर करता है जिनकी वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। ये जो सकल जगत के परमात्मा भगवान बने बैठे इनके भी जो ईश्वर अक्षरा दीद है वो प्राणनाथ जाकर के हरिद्वार में पहुंचे। अब जरा हरिद्वार के मेले का प्रसंग सुंदर साहब जी सुनो बड़े मजे का है। ये न घबराना क्योंकि अक्सर जहाँ श्रावण के महीने में बीतक होती है ना तो सुनाने वाले भी पहले ही कह देते हैं कि सुंदर साहब जी अब तो हरिद्वार का प्रसंग है इनमें तो तुमको स्वाद जस्ट आएगा नहीं पर हमको भी तो पूरा करना है। नहीं जिसने अपनी आत्मा को जगाना जिसने समझना है प्रणामी धर्म कौन है जिसने ये ज्ञान लेना है कि मैं कौन हूं वो हरिद्वार के प्रसंग को सुने और समझे और राज्य की कृपा से समझाएंगे। चिंता मत करो सबसे महत्वपूर्ण अगर सारी विद्या के अंदर कोई प्रसंग है तो वो कौन सा है हरिद्वार का जहां हमारे धाम नदी में जाए होना है विद्यावृंद मद निष्कलन का दार और उनका सिक्का उनकी मोहर चालू होनी है उनकी ध्वजा फिराई जानी है विष्णु के अंदर। ये हरिद्वार का प्रसंग है। अब वहां सुंदर साहब जी सबसे पहले अब देखो ना छात्रों के हिसाब से बात चलेगी इस जगत के अंदर हिंदू जगत के अंदर सबसे पुराना प्राचीन पुरातन कौसा धर्म है सनातन। उसकी चार शाखाएं उस समय देश में चल रही थी और चारों के आचार्य वहां पर पहुंचे हुए क्योंकि जब भी कुंभ का मेला लगता है तो सब धर्मों के आचार्य वहां पर अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वहां पहुंचते हैं। 1735 में आदि सनातन धर्म की चार संप्रदायें जो थी उनके चारों आचार्य कहां पर थे और सन्यास मत के 10 शाखाएं 10 नाम सन्यास मत के जो मुनिवर थे आचार्य थे वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे और चार वेद और 6 दर्शन जो है उनके भी आचार्य वहां पर पहुंचे हुए थे। उसके बाद और भी बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े ज्ञाता जो ग्रंथों के थे वो सब वहां पर थे। पर सुंदर साथ जी जब सबने मिलकर स्वामी जी को देखा तो उनके हृदय में क्या संशय हो गया कि ये तो हिंदू है ही नहीं। ध्यान देना अब बात को समझो क्यों क्या कारण था। उनके हृदय में ये संशय इसलिए गया कि जैसा अपने आचार्य महाशिष्य अक्सर आपने देखा होगा कैसा तिलक लगाते दो रेखा और बीच में बिंदी लगाते चंदन और बीच में बिंदी शिरकी ने लगाई हुई थी अब ऐसा चंदन किसी भी धर्म में लगाया जाता नहीं था, ये कर्म था। जब उन्होंने देखा कि भी ये दो बिंदी भी दो रेखा बीच में बिंदी और गले में बांधा, ये तो कोई नया धर्म नहीं, ये तो औरंगजेब ने कोई अपना दूत भेजा है। अगर हिंदू धर्म का किसी का आचार्य होता तो इसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए थे? भगवा वस्त्र। और स्वामी जी ने भगवा वस्त्र कभी धारण किया नहीं, इसलिए स्वामी जी का स्वरूप देखकर सफेद वस्त्र अरे दो रेखा वाला चंदन देखकर के उनके दिल में शक हो गया और सब ने मिलकर एकदम सब धर्मों के आचार्य महाराज इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर क्या बोले, स्वामी जी से आके कहा, हे महाराज हमें लगता है कि आपका धर्म आपका मार्ग आपका रास्ता जो है ये कोई न्यारा ही नया ही है, मालूम होता है कि हम हिंदुओं के अंदर तुम्हारा धर्म नहीं है। क्या मतलब? ये प्रतीत होता है कि तुम हिंदू नहीं हो, कि तुम हिंदुओं के अंदर तो नहीं लगते हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा चंदन वाला और तुम्हारे जैसे रूप वाला कोई नया धर्म भारतवर्ष में चला हो ना तो हमने देखा है और ना ही हमारे प्रचारकों ने आकर के या शिष्यों ने कोई सूचना हमको दी है। भारतवर्ष में तो ऐसे चंदन वाला और ऐसी बड़ा वाला कोई धर्म है नहीं। सारे धर्माचार्य मिलकर कह रहे महाराज अपना जारो देव, जारो का मतलब क्या कि अपनी और खान तुम्हें हमको करो कि तुम किस धर्म को मानते हो। सुंदर साधी समझ लग रही है कि नहीं, बोलो बोलो। हाँ, क्योंकि अक्सर प्रतीक्षा के दिनों में कहा जाता ना, अरे भाई ये तो हर भाषा पर सब किसी ऐसा है तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। क्यों चर्चा करने वाले ऐसा कह देते हैं? क्योंकि उनको समझाने का ढंग है नहीं, इसलिए सुनने वालों को कह दिया करते हैं तुम्हारी समझ में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं, तभी तो वो लोग भी चर्चा करते हैं अपना नाती को उपाधि दी उपाधि उपाधि। आए आए क्या करूं, मेरे सामने कोई कह दे उपाधि तब तो उसका पूछूं तो उपाधि क्या कैसे रहा है, पर लिखी पत्रकारी खा जाती है इसलिए हम खा के सह करता हूं। अब आदरा सुनो, अब उन्होंने कहा कि तुम हम मार्ग में नहीं, इसलिए चारों दीजो। चारों देनों का अर्थ क्या होता है? और खान कराओ में अपनी पहचान कराओ कि तुम हिंदू कैसे हो। दावत कहे वचन श्री राय ने, स्वामी जी ने क्या वचन कहा जिसको ना समय लगे भाई ऊपर का वचन और हाथ करना कि हमको समय नहीं लगी है, हम 10 बार दोबारा समझाएंगे। पर ध्यान इधर रखोगे तो और बैठे रहो यहाँ और ध्यान चला जाए क्षेत्र में तब मुझको नहीं बोलना, ध्यान इधर रखो और एक एक वचन को सुनो। अब स्वामी जी ने क्या कहा कि आचार्य महाराज श्री जी तुम प्राचीन पुरातन धर्म वाले हो, लेकिन ये ना कहो कि हम हिंदू नहीं। हम हिंदू तो अवश्य है और जितने भी भारतवर्ष के अंदर धर्म है, ध्यान देना तो समझ आएगी। स्वामी जी बोल रहे उन आचार्यों को क्या कह रहे कि भारतवर्ष के अंदर 4 सनातन धर्म है और संप्रदाय सन्यासमत की 10 शाखाएं हैं, 4 वेद और शिव दर्शन है। इन धर्मों में से हमने किसी धर्म को धारण नहीं किया। आप किसको नहीं समझे स्वामी जी बोले, और इसीलिए हम हरिद्वार में आए गए। हम तो संतों की शरण में जाते रहे और सब संतों ने यही बताया कि मनुष्य तन मिला है भावसागर से बाहर उतरवा बाटे, ये ज्ञान तो सुना है। पर हमने हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू धर्म है उनमें से किसी को गुरु धारण नहीं किया। हम इधर गुरु धारण करवा माटे आए, पर हम गुरु किसको धारण करेंगे? जो हमारे जीव को भव सागर से बाहर उतरने का मार्ग मुक्ति का बतला देगा, हम उसी की शरण में आ जाएंगे। ये बच्चा जो मेरे साथी है, इन्होंने भी गुरु धारण नहीं किया, ये भी तुम्हारी शरण में आने को तैयार है। और भी बहुत सारे अभी कबीले हम लोग दिल्ली में छोड़ आए हैं, वो भी तब तक पहुंच जाएंगे। पर बात ये है, ध्यान देना सुंदरता जी, बड़े बड़े गवर्सन सारी पीछे तो ऐसे आनंद वाली चढ़ता ही है। स्वामी जी कहते हैं, पर महाराज श्री जी है आचार्य जनों, मेरी मोटी सी बात है एक कि हम पढ़े लिखे तो इतने हैं और इस समय आप ज्ञान चर्चा सुनाओगे, एक तो दिल में अभिमान नहीं लेना और दूसरा यदि कोई हमको संशय होएगा तो संशय पर क्रोध नहीं करना, क्योंकि तुम तो बड़ा बुद्धिमान है और मने कोई आवे जावे है नहीं। और अगर आपकी चर्चा सुनकर कोई संशय होवे तो क्रोध में नहीं आना, मेरे प्रश्न को सुन कर मेरे प्रश्न का उत्तर जवाब दे देना, संशय मिटा देना, पर आपके पगे लग जाएंगे और आपकी दीक्षा ले लेंगे। क्रोध और अहम अहम अहंकार के हम आचार्य कैसा प्रश्न करता है, ऐसा नहीं, हमारे प्रश्न को सुनना और क्रोध में नहीं आना, क्योंकि धर्म की चर्चा क्रोध से समझाई नहीं जाती, प्यार से समझाना और हम समझ लेंगे। और चित दे करके मेरे प्रश्न को सुना कि हम क्या कह रहे हैं और फिर उसका जो है उत्तर देना, पर ग्रंथों का प्रमाण दे करके जिस बात को समझाओ, ग्रंथों का प्रमाण दोगे तब तो मैं मानूंगा। अगर कहीं की ईंट और कहीं कालोना और भानुमती ने कुनवा जोड़ा तो उसको मैं नहीं मानूंगा, जो भी उत्तर दे हो उसका प्रमाण देना पहले के हिंदुओं के ग्रंथों में, गीता में, भागवत में, पुराण में, शास्त्र में, वेदों में, उपनिषद में, पुराण संहिता, गीता संहिता, किसी ग्रंथ में हो, ग्रंथ का प्रमाण दोगे तो हम स्वीकारेंगे। यदि तुम्हारी बात का प्रमाण ग्रंथ में नहीं होगा तो मैं स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। बाकायदा वेद ले क्या मतलब, कोई ना कोई ग्रंथ का प्रमाण देकर के बोलोगे तो मैं स्वीकार करूंगा। बस महाराज वही ग्रहण करने के लिए आपकी शरण में आए हैं कि हमारे जीव को मुक्ति मिल जाए और हम भाव सागर से पार हो जाएं। अब तुम्हारे धर्म के अंदर जो तुमने पद्धति दृढ़ कर रखी है कि इष्ट किसको मानते हो, तुम्हारा परमात्मा कौन है, वो साधन क्या है, मंत्र क्या है, वो सारा चढ़ाओ तो तुम्हारे धर्म का होवे, वो कृपा करके मुझे समझाओ। हमको आप बता देना, और यदि मुझे किसी बात पर संशय होगा तो मैं प्रश्न करूंगा, और संशय नहीं होगा तो मैं प्रश्न नहीं करूंगा। फिर यदि मेरा संशय होवे तो मेरा संशय निवारण कर देना, संशय को मिटा देना, बस आपके चरणों में प्रणाम कर लेंगे और मंत्र दीक्षा ले लेंगे। आ जाओ भाई, सबसे पहले नंबर किसका आया, आदि सनातन धर्म जिनकी चार संप्रदाय है, किस संप्रदाय को आज कहते हो पुष्टि मार्ग, और वृंदावन में उसको कहते हैं श्री मार्ग, श्री संप्रदाय, ऐसा इसको क्या कहते हैं, रामानुज, दूसरी है नीमानुज, तीसरी है माधवाचार्य और चौथी है विष्णु श्याम संप्रदाय। ए आदि सनातन धर्म की चार संप्रदाय है, सबसे पहले जिसका नंबर आया और पीछे बैठे वाले सुंदर साधु भाई, तुम्हारे लिए भी चर्चा हुई है, रामा